ज़करिया अध्याय एक। यहावे के पास वापस लौटने के लिए बुलाहट। राजा दारियावेश के शासनकाल के दूसरे साल के आठवें महीने में यहावे का यह वचन बेरेखिया के पुत्र और इद्दो के पोते ज़करिया भविष्यवक्ता के पास आया। यहावे तुम्हारे पूर्वजों से बहुत क्रोधित थे, इसलिए लोगों को बताओ, सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, मेरे पास लौट आओ। सर्वशक्तिमान यहावे की यह घोषणा है, तो मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सर्वशक्तिमान यहावे का कहना है, अपने पूर्वजों के समान मत बनो, जिन्हें पहले के भविष्यद्वक्ताओं ने पुकार पुकार कर कहा था। सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, अपने बुरे चाल चलन और अपने बुरे कार्यों को छोड़ो, किंतु उन्होंने ना तो मेरी बातों को सुना और ना ही मेरी ओर ध्यान दिया। यहावे की घोषणा है, तुम्हारे पूर्वज अब कहाँ है, और भविष्यवक्ता, भविष्यद्वक्ता, क्या वे सदाकाल तक जीवित हैं? पर मेरे वचन और कानून जो मैंने अपने सेवक भविष्यद्वक्ताओं को दिए थे, क्या वे तुम्हारे पूर्वजों की मृत्यु के बाद भी बने हुए नहीं है? तब उन्होंने प्रायश्चित किया और कहा, सर्वशक्तिमान यहावे ने ठीक वही किया है जैसा कि हमारे चाल चलन और हमारे कर्मों के कारण हमारे साथ किया जाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने करने की ठानी थी। मेहंदी पेड़ों के बीच मनुष्य। राजा दरियावेश के शासनकाल के दूसरे साल के 11वें महीने अर्थात शबात महीने के 24वें दिन यहावे का यह वचन बेरेखिया के पुत्र और इद्दो के पोते ज़करिया भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। रात के समय मैंने एक दर्शन में देखा कि मेरे सामने लाल घोड़े पर सवार एक व्यक्ति था। वह घाटी में मेहंदी के पेड़ों के बीच खड़ा था और उसके पीछे लाल, भूरे और सफेद रंग के घोड़े थे। तब मैंने पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है जो स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा था? उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये क्या है। तब जो व्यक्ति मेहंदी के पेड़ों के बीच खड़ा था, उसने कहा, ये वे है जिन्हें यहावे ने पूरे पृथ्वी पर भेजा है, और उन्होंने यहावे के उस स्वर्गदूत को यह सूचित किया जो मेहंदी के पेड़ों के बीच खड़ा था। हम पूरी पृथ्वी में गए और देखा कि सारी पृथ्वी में चैन और शांति है। तब यहावे के दूत ने कहा, हे सर्वशक्तिमान यहावे, आप जो यरूशलेम तथा यहूदिया के शहरों पर पिछले 70 सालों से क्रोधित हैं, कब तक आप इन पर अपनी दया नहीं दिखाएंगे? तब यहावे ने उस स्वर्गदूत से जो मुझसे बात कर रहा था दयालु और सात्वनापूर्ण शब्द कहा। फिर वह स्वर्गदूत जो मुझसे बातें कर रहा था, उसने कहा, इन बातों की घोषणा करो, सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, यरूशलेम तथा जियोन के प्रति मेरी बहुत जलन है, और मैं उन जनताओं से बहुत क्रोधित हूँ जो आराम में है। पहले मैं सिर्फ थोड़ा क्रोधित था, किंतु उन्होंने खुद ही अपनी विपत्तियां बढ़ा ली है। इसलिए यहावे का यह वचन है, मैं कृपा करने के लिए यरूशलेम लौटूंगा और वहां मेरे भवन को फिर से बनाया जाएगा और यरूशलेम के ऊपर नापने की लकीर खींची जाएगी। सर्वशक्तिमान यहावे की घोषणा है। आगे और घोषणा करो, सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, मेरे नगर फिर समृद्ध होंगे और यहावे फिर जियोन को सात्वना देंगे तथा यरूशलेम को अपना ठहराएंगे। 4 सींग और 4 शिल्पकार। फिर मैंने देखा और वहां मेरे सामने 4 सींग थे, तो मैंने उस स्वर्गदूत जो मुझसे बातें कर रहा था, उससे पूछा, ये क्या है? उसने मुझे उत्तर दिया, ये वे सींग हैं जिन्होंने यहूदिया, इसराइल और यरूशलेम को तितर बितर कर दिया है। फिर यहावे ने मुझे 4 शिल्पकार दिखाए। मैंने पूछा, ये क्या करने के लिए आए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये वे सींग हैं जिन्होंने यहूदिया को तितर बितर कर दिया है, ताकि कोई अपना सिर ना उठा सके, पर ये शिल्पकार उन्हें भयभीत करने उन जनताओं के इन सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जो यहूदिया देश के शत्रुओं को भयभीत कर देंगे और उन राष्ट्रों के सींग काट डालेंगे जिन्होंने यहूदिया के लोगों को तितर बितर करने के लिए आक्रमण किया है। ज़करिया अध्याय 2। नापने वाली रस्सी के साथ एक व्यक्ति। तब मैं अपने सामने एक व्यक्ति को अपने हाथ में नापने वाली रस्सी लिए हुए देखा। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं यरूशलेम शहर को नापने जा रहा हूँ ताकि पता चल सके कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। जब मुझसे बातें करने वाला स्वर्गदूत जा रहा था, तब एक दूसरा स्वर्गदूत उससे मिलने आया और उससे कहा, दौड़कर जाओ और उस जवान से कहो, मनुष्य और पशुओं के बहुतायात के कारण यरूशलेम बिना दीवारों का शहर हो जाएगा और मैं स्वयं इसके चारों ओर आग की दीवार बन जाऊंगा। यहवे की घोषणा है और उसके भीतर मैं उसकी महिमा बनूंगा। आओ आओ, उत्तर के देश से भाग जाओ, यहवे की घोषणा है, क्योंकि मैंने तुम्हें आकाश के चारों दिशाओं के हवा के समान तितर बितर कर दिया है। यहवे की घोषणा है, हे जियोन आओ, तुम जो बाबेल वासियों के बीच रहते हो बचकर भाग निकलो, क्योंकि सर्वशक्तिमान यहवे का यह कहना है, उन्होंने अपने महिमा के निमित्त ही मुझे उन जातियों के विरुद्ध भेजा है जिन्होंने तुम्हें लूट लिया है, क्योंकि यदि कोई तुम्हें छूता है तो वह उसकी यहवे की आंख की पुतली को छूता है। मैं निश्चित रूप से उनके विरुद्ध अपना हाथ उठाऊंगा ताकि उनके गुलाम उन्हें लूटे, तब तुम जान जाओगे कि सर्वशक्तिमान यहवे ने मुझे भेजा है। हे मेरी बेटी जियोन, ऊंचे स्वरों में गा और आनंदित हो, क्योंकि मैं आकर तुम्हारे बीच निवास करूंगा, यहवे की घोषणा है। उस दिन बहुत सी जातियां यहवे के साथ मिल जाएंगी और वे मेरे लोग बन जाएंगे। मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा और तुम जान जाओगे कि सर्वशक्तिमान यहवे ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यहवे पवित्र देश में यहूदिया को अपने भाग के रूप में ले लेंगे और यरूशलेम को फिर चुन लेंगे। हे सब लोगों, यहवे के सामने शांत रहो, क्योंकि उन्होंने अपने पवित्र निवास से अपने आप को खड़ा किया है। जकरिया अध्याय 3। महापुरोहित के लिए साफ कपड़े। तब उसने मुझे दिखाया कि महापुरोहित यहोशू यहवे के दूत के सामने खड़ा है और स्वर्गदूत के दाएं तरफ शैतान यहोशू पर दोष लगाने के लिए खड़ा है। यहवे ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहवे तुझे डांटे, यहवे जिसने यरूशलेम को चुन लिया है तुझे डांटे, क्या यह व्यक्ति आग से निकाली गई जलती हुई लाठी के समान नहीं है? इस समय यहोशू स्वर्गदूत के सामने गंदे कपड़े पहने हुए खड़ा था। तब स्वर्गदूत ने अपने सामने खड़े व्यक्तियों से कहा, उसके गंदे कपड़ों को उतार दो। तब उसने यहोशू से कहा, देखो, मैंने तुम्हारे पापों को दूर कर दिया है और मैं तुम्हें सुंदर कपड़े पहनाऊंगा। तब मैंने कहा, उसके सिर पर एक साफ पगड़ी रखो। तब उन्होंने महापुरोहित यहोशू को एक साफ पगड़ी और साफ कपड़े पहनाए और यहवे का दूत उसके पास खड़ा था। उसके बाद यहवे के दूत ने यहोशू को यह आश्वासन दिया, सर्वशक्तिमान यहवे का यह कहना है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरी विधियों पर चलोगे तो तुम मेरे भवन पर शासन करोगे और मेरे आंगनों पर तुम्हारा अधिकार होगा, और मैं तुम्हें इन लोगों के बीच में जगह दूंगा जो यहाँ खड़े हैं। हे महापुरोहित यहोशू, तुम और तुम्हारे सामने बैठे हुए तुम्हारे सहकर्मी, तुम सब जो आने वाली चीजों के प्रतीक मात्र हो, सुन तो लो, मैं अपने सेवक शाखा को लाने वाला हूँ। उस पत्थर को देखो जिसे मैंने यहोशू के सामने रखा है, उस एक ही पत्थर में 7 नेत्र हैं, और मैं उस पर एक लेख उकेरूंगा, सर्वशक्तिमान यहवे का कहना है, और मैं एक ही दिन में इस देश के पाप को हटा दूंगा। उस दिन तुम में से हर एक अपने पड़ोसी को अंगूर और अंजीर पेड़ के नीचे संगति करने के लिए आमंत्रित करेगा। सर्वशक्तिमान यहवे की यह घोषणा है। जकरिया अध्याय 4। सोने का दीवट और 2 जैतून के पेड़। फिर वह स्वर्गदूत जिसने मुझसे बातें की थी लौट आया और मुझे ऐसा जगाया जैसे किसी को नींद से जगाया जाता है। उसने मुझसे प्रश्न किया, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मैंने उत्तर दिया, मुझे एक ठोस सोने का दीवट दिखाई दे रहा है जिसके चोटी पर एक कटोरा है जिसमें 7 दिए हैं और दियों पर बाती के लिए 7-7 नालियां हैं। दीवट के पास 2 जैतून के पेड़ भी हैं, एक कटोरे के दाईं ओर तथा दूसरा उसके बाईं ओर। जो स्वर्गदूत मुझसे बातें कर रहा था, मैंने उससे पूछा, हे मेरे प्रभु, ये सब क्या है? उसने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि ये क्या है? मैंने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, नहीं। अतः स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह जेरुबाबेल के लिए यहावे का वचन है, ना तो बल से और ना ही शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा। सर्वशक्तिमान यहावे का कहना है, हे विशाल पहाड़, क्या हो तुम? जेरुबाबेल के सामने तुम समतल मैदान बन जाओगे। तब वह चोटी के पत्थर को यह चिल्लाते हुए ले आएगा, परमेश्वर इसे आशीष दे, परमेश्वर इसे आशीष दे। इसके बाद यहावे का यह वचन मेरे पास आया, जेरुबाबेल ने अपने हाथों से इस मंदिर की नींव डाली है और उसी के द्वारा यह काम पूरा होगा। तब तुम जान जाओगे कि सर्वशक्तिमान यहावे ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। कौन है जो छोटी बातों के दिन को तुच्छ समझता है, जबकि यहावे की सात आंखें जो सारी पृथ्वी पर नजर रखती है, जब वे यह देखेंगी कि चुना हुआ चोटी का पत्थर जेरुबाबेल के हाथ में है, तो वे आनंदित होंगी। तब मैंने स्वर्गदूत से पूछा, ये जैतून के दो पेड़ों का मतलब क्या है जो दीवट के दाईं और बाईं तरफ है? मैंने उससे फिर पूछा, दो सोने के नलियों के बाजू में जैतून की ये दो शाखाएं क्या है जो सुनहरा तेल उंडेलती है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, नहीं। तब उसने कहा, ये दो वे है जिन्हें सारी पृथ्वी के प्रभु की सेवा करने के लिए अभिषेक किया गया है। जकरिया अध्याय 5। उड़ता हुआ चर्म पत्र। मैंने फिर देखा और मेरे सामने उड़ता हुआ एक चर्म पत्र था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मैंने उत्तर दिया, मुझे उड़ता हुआ एक चर्म पत्र दिखाई दे रहा है जो लगभग 10 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो सारे देश पर लगेगा, क्योंकि इस पत्र के एक तरफ जो लिखा है उसके अनुसार हर एक चोर को निकाल दिया जाएगा, और इस पत्र के दूसरी ओर जो लिखा है उसके अनुसार हर एक व्यक्ति जो झूठी शपथ खाता है वह भी निकाल दिया जाएगा। सर्वशक्तिमान यहावे घोषणा करते हैं, मैं इस शाप को भेजूंगा और यह हर चोर के घर में और मेरे नाम से झूठी शपथ खाने वाले हर व्यक्ति के घर में घुसेगा। यह उस घर में बना रहेगा और उसे उसके लकड़ी और पत्थर सहित पूरी तरह नष्ट कर देगा। स्त्री एक टोकरी में। तब वह स्वर्गदूत जो मुझसे बातें कर रहा था सामने आकर मुझसे कहने लगा, ऊपर देखो कि वहां प्रकट हो रहा है। मैंने पूछा, यह क्या है? उसने उत्तर दिया, यह एक टोकरी है। और उसने आगे कहा, यह पूरे देश के लोगों का पाप है। तब शीशे के ढक्कन को हटाया गया और वहां टोकरी में एक स्त्री बैठी हुई थी। तब स्वर्गदूत ने कहा, यह दुष्टता है। और उसने उस स्त्री को टोकरी में वापस धकेल दिया और शीशे के ढक्कन को टोकरी पर ढांक दिया। तब मैंने ऊपर देखा और वहां मेरे सामने दो स्त्रियां थीं जो अपने पंखों से हवा में उड़ रही थी। उनके पंख एक सारस के समान थे और उन्होंने उस टोकरी को आकाश और पृथ्वी के बीच में उठा लिया। तब वह स्वर्गदूत जो मुझसे बातें कर रहा था, मैंने उससे पूछा, वे उस टोकरी को कहाँ लिए जा रही है? उसने उत्तर दिया, बेबीलोनिया देश को, जहां वे इसके लिए एक घर बनाएगी। जब घर बन जाएगा तब टोकरी को वहां उसके जगह में रख दिया जाएगा। जकरिया अध्याय 6। चार रथ। तब मैंने फिर ऊपर देखा और मेरे सामने चार रथ दो पर्वतों के बीच में से निकलकर आ रहे थे को देखा, और ये पर्वत कांसा धातु के थे। पहले रथ में लाल घोड़े, दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में सफेद और चौथे रथ में चितकबरे घोड़े थे, और सबके सब ताकतवर थे। मुझसे जो स्वर्गदूत बातें कर रहा था, मैंने उससे पूछा, हे प्रभु, ये क्या है? स्वर्गदूत ने मुझे उत्तर दिया, ये स्वर्ग की वे चार आत्माएं हैं जो सारे संसार के प्रभु के सामने खड़ी रहती है। और अब उनके सामने से बाहर जा रही है। जिस रथ में काले रंग के घोड़े हैं, वह उत्तर के देश को जा रहा है, और जिसमें सफेद घोड़े हैं, वह पश्चिम की ओर और जिसमें चितकबरे घोड़े हैं, वह दक्षिण की ओर जा रहा है। जब ये ताकतवर घोड़े बाहर गए तो वे सारी पृथ्वी में जाने के लिए अधीर थे, और उसने कहा, सारी पृथ्वी में जाओ।
अतः वे सारी पृथ्वी में गए।
तब उसने मुझे पुकार कर कहा, देखो, वे जो उत्तरी देश की ओर गए हैं, उन्होंने उत्तर के देश में मेरी आत्मा को शांति दी है। यहोशू के लिए मुकुट। यहावे का यह वचन मेरे पास आया, बाबेल से लौटे बंधुआई के इन लोगों हेल्दे, तोबिया तथा येदाइया से सोना और चांदी ले लो, और उसी दिन जेफनिया के पुत्र योशिया के घर जाओ।
सोना और चांदी को लेकर एक मुकुट बनाओ,
और उस मुकुट को यहोत्सादाक के पुत्र महापुरोहित यहोशू के सिर पर रखो। उसे बताओ कि सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, यह वह व्यक्ति है जिसका नाम शाखा है, और वह अपने ही जगह से शाखा निकालकर यहावे के मंदिर का निर्माण करेगा। यह वही है जो यहावे के मंदिर का निर्माण करेगा, और वह राजकीय वस्त्र धारण करेगा और सिंहासन पर बैठकर राज करेगा, और उसके सिंहासन पर एक पुरोहित होगा, और उन दोनों के बीच अच्छा समन्वय रहेगा। यहावे के मंदिर में मुकुट को एक स्मृति के रूप में हेल्दाई, तोबिया, येदिया और जेफेनिया के पुत्र हेन को दिया जाएगा। तब लोग दूर दूर से आएंगे और यहावे के मंदिर के बनाने में मदद करेंगे, और तुम जानोगे कि सर्वशक्तिमान यहावे ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यह तभी होगा जब तुम यहावे अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन मन लगाकर करोगे। जकरिया अध्याय 7। न्याय और दया, उपवास नहीं। दार्यावेश राजा के शासनकाल के चौथे साल के नवे महीने, यानी कि किसलेव के महीने के चौथे दिन, यहावे का यह वचन जकरिया के पास आया। बेथेल के लोगों ने यहावे से विनती करने और यह पूछने के लिए शारजेर रेगेम मेलेक तथा उनके साथियों को सर्वशक्तिमान यहावे के भवन के पुरोहितों और भविष्यद्वक्ताओं के पास भेजा, क्या हम पांचवें महीने में शोक मनाएं और उपवास करें, जैसा कि हम कई सालों से करते आ रहे हैं? तब सर्वशक्तिमान यहावे का यह वचन मेरे पास आया, देश के सारे लोगों और पुरोहितों से पूछो, जब तुमने पांचवें और सातवें महीने में पिछले 70 सालों तक उपवास तथा विलाप किया, तो क्या सही में तुमने मेरे लिए ही उपवास किया? और जब तुम खाते और पीते थे, तो क्या तुम ये सब सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए नहीं करते थे? क्या ये यहावे के वचन नहीं है जिसकी घोषणा उन्होंने पहले के भविष्यद्वक्ताओं के जरिए की थी, जब यरूशलेम और उसके आसपास के नगर शांति और समृद्धि में थे, और नेगेव और पश्चिम के नीचे के देश बस गए थे? और यहावे का यह वचन जकरिया के पास फिर आया, सर्वशक्तिमान यहावे ने यह कहा है, निष्पक्ष न्याय करो, एक दूसरे के प्रति दया और सहानुभूति दिखाओ, विधवा या अनाथ, विदेशी या गरीब पर अत्याचार मत करो, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र मत करो। किंतु उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, ढीठता से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया और अपने कानों को बंद कर लिया। उन्होंने अपना हृदय पत्थर के समान कठोर बना लिया और कानून की बातों या सर्वशक्तिमान यहावे के उन वचनों को नहीं सुना, जिसे उन्होंने अपनी आत्मा के द्वारा पहले के भविष्यद्वक्ताओं के जरिए भेजा था। इसलिए सर्वशक्तिमान यहावे बहुत क्रोधित हुए। जब मैंने पुकारा तो उन्होंने नहीं सुना, इसलिए जब वे मुझे पुकारेंगे तो मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, मैंने उन्हें एक बवंडर से जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दिया है, जहां वे अजनबी थे, वह देश जिसे वे अपने पीछे छोड़ आए ऐसा उजाड़ पड़ा था कि उसमें से होकर कोई भी नहीं जाता। इसी प्रकार से उन्होंने उस खुशनुमा देश को उजाड़ दिया। जकरिया अध्याय 8। यहावे यरूशलेम को आशीष देने की प्रतिज्ञा करते हैं। सर्वशक्तिमान यहावे का वचन मेरे पास आया। सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, जियोन के लिए मैं बहुत जलन रखता हूँ,
मैं उसके लिए ईर्ष्या से जल रहा हूँ।
यहावे का यह कहना है, मैं जियोन लौट आऊंगा और यरूशलेम में निवास करूंगा। तब यरूशलेम ईमानदार शहर कहलाएगा और सर्वशक्तिमान यहावे का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, एक बार फिर यरूशलेम के गलियों में बूढ़े पुरुष और महिलाएं बैठा करेंगी और बहुत उम्र होने के कारण हर एक के हाथ में लाठी होगी। शहर की गलियां खेलते हुए बालक बालिकाओं से भरी होगी। सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, उस समय इन लोगों के बचे हुओं को यह अद्भुत लगे, पर क्या यह मुझे अद्भुत लगेगा? सर्वशक्तिमान यहावे की यह घोषणा है। सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, मैं अपने लोगों को पूर्व और पश्चिम के देशों से बचाऊंगा। मैं उन्हें यरूशलेम में बसने के लिए वापस ले आऊंगा। वे मेरे लोग होंगे और मैं उनके परमेश्वर के रूप में उनके प्रति विश्वास योग्य और धर्मी ठहरूंगा। सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, अब तुम इन बातों को सुनो। तुम्हारे हाथ मजबूत रहे ताकि मंदिर को बनाया जा सके। यही बात उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई है जो सर्वशक्तिमान यहावे के भवन की नींव डालने के समय उपस्थित थे। उस समय से पहले ना तो मनुष्यों को मजदूरी मिलती थी और ना ही पशुओं के लिए भाड़ा। अपने शत्रुओं के कारण कोई भी अपने काम धंधे में जाने के लिए सुरक्षित नहीं था, क्योंकि मैंने ही उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध कर रखा था। पर अब मैं इन लोगों के बचे हुओं से वैसा व्यवहार ना करूंगा जैसा कि पहले के दिनों में करता था। सर्वशक्तिमान यहावे की यह घोषणा है, बीज अच्छी तरह से बढ़ेगा, अंगूर की लता में फल लगेगा, भूमि में फसल होगी और आकाश से ओस पड़ेगी। मैं ये सब चीजें इन लोगों के बचे हुओं को एक उत्तराधिकारी के रूप में दूंगा। जैसा कि हे यहूदिया और इज़राइल, तुम जाति जाति के लोगों के बीच एक अभिशाप बन गए हो, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम एक आशीष का कारण बनोगे। भयभीत ना हो, पर तुम्हारे हाथ मजबूत बने रहे। सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, जब तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे क्रोधित किया था, तो जैसा कि मैंने तुम्हारे ऊपर विपत्ति लाने और
दया ना करने की बात ठान ली थी,
सर्वशक्तिमान यहावे का कहना है, वैसा ही अब मैंने यरूशलेम तथा यहूदिया पर फिर से भलाई करने की ठान ली है। भयभीत ना हो। ये वे बातें हैं जिन्हें तुम्हें करना है। एक दूसरे के साथ सत्य बोलो और अपने अदालतों में सच और सही निर्णय दिया करो। एक दूसरे के विरुद्ध बुरी युक्ति ना करो और झूठी शपथ खाने में तत्पर ना हो, क्योंकि मैं इन सब बातों से घृणा करता हूँ। यहावे की यह घोषणा है। सर्वशक्तिमान यहावे का यह वचन मेरे पास आया। सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, चौथे पांचवे सातवें तथा दसवें माह के उपवास यहूदिया के लिए आनंद और खुशी के अवसर और सुखद पर्व हो जाएंगे।
अतः सत्य और शांति से प्रेम करो।
सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, बहुत से लोग और
बहुत से शहरों के रहने वाले आएंगे
और एक शहर के रहने वाले दूसरे शहर में जाकर कहेंगे, आओ यहावे से विनती करने तुरंत चले और सर्वशक्तिमान यहावे की खोज में रहे, मैं स्वयं जा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग और सामर्थी जातियों के लोग सर्वशक्तिमान यहावे को खोजने और उससे विनती करने यरूशलेम आएंगे। सर्वशक्तिमान यहावे का यह कहना है, उन दिनों में सब भाषाओं और जातियों से 10 व्यक्ति एक यहूदी व्यक्ति को उसके कपड़े के छोर से पकड़कर कहेंगे,
हम तुम्हारे साथ चलते हैं,
क्योंकि हमने यह सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जकरिया अध्याय 9। इज़राइल के शत्रुओं पर दंड। एक भविष्यवाणी हदराक देश के विरुद्ध में यहावे का यह वचन है और इसका प्रभाव दमिश्क पर पड़ेगा, क्योंकि सारे लोगों और इज़राइल के सारे गोत्रों की दृष्टि यहावे पर लगी है और इसकी सीमा से लगे देश अमात पर लगी है और सोर और सीदोन पर भी लगी है, यद्यपि वे बहुत कुशल है। सोर ने अपने लिए एक दृढ़ गढ़ बनाया है, उसने चांदी को धूल के समान और सोना को गली के कीचड़ के समान बटोर रखा है, पर प्रभु उसकी सब चीजों को ले लेगा और उसकी शक्ति को समुद्र में डाल देगा और वह आग में जलकर नष्ट हो जाएगी। अश्कलोन यह देखकर भयभीत होगा, अज्जा अति कष्ट में छटपटाएगा और यही स्थिति एक्रोन की भी होगी, क्योंकि उसकी आशा जाती रहेगी। अज्जा में राजा ना रह जाएगा और अश्कलोन को त्याग दिया जाएगा। एक दोगली जाति के लोग अश्दोद पर अधिकार कर लेंगे और मैं फिलिस्तीनियों के घमंड को तोड़ दूंगा। मैं उनके मुंह में से रक्त और उनके दांतों के बीच से निषेध किए गए भोजन को छीन लूंगा। तब वे जो बच जाएंगे वे हमारे परमेश्वर के हो जाएंगे और यहूदिया में एक गोत्र बन जाएंगे और एक्रोन यबूसियों के समान हो जाएगा। पर मैं अपने मंदिर को लुटेरों से बचाने के लिए उसकी पहरेदारी हेतु पड़ाव डालूंगा। कोई भी अत्याचारी फिर कभी मेरे लोगों पर अधिकार करने ना पाएगा, क्योंकि अब मैं पहरेदारी कर रहा हूं। ज़ियोन के राजा का आना। हे बेटी ज़ियोन, अति आनंदित हो, हे बेटी यरूशलेम, जय जयकार करो। देखो, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, वह धर्मी और विजय होकर आता है। वह विनम्र और एक गधे पर, एक बछड़े पर, एक गधी के बच्चे पर सवार है। मैं एफ्राइम से रथों को और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को ले लूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ दिए जाएंगे। तब वह जाति जाति के लोगों के बीच शांति की घोषणा करेगा। उसका साम्राज्य एक समुद्र से लेकर दूसरे समुद्र तक और नदी से लेकर पृथ्वी के छोर तक फैलेगा। जहां तक तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे साथ मेरी वाचा के लहू के कारण मैं तुम्हारे कैदियों को उस जलहीन गड्ढे से बाहर निकाल लूंगा। हे आशा लिए हुए कैदियों, अपने गढ़ में लौट आओ। आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं तुम्हें उसका दो गुना लौटा दूंगा। मैं यहूदिया को अपने धनुष के सदृश झुकाऊंगा और एफ्राइम से इसे भर दूंगा। हे ज़ियोन, मैं तुम्हारे बेटों को यावन के बेटों के विरुद्ध उत्तेजित करूंगा और तुम्हें योद्धा की तलवार के समान कर दूंगा। यहावे प्रकट होगा। तब यहावे उन पर प्रकट होगा और उसके तीर बिजली के समान चमकेंगे। परम यहावे तुरी फूकेंगे, वे दक्षिण से उठे आंधी से होकर चलेंगे और सर्वशक्तिमान यहावे उनकी रक्षा करेंगे। वे नष्ट कर देंगे और गोफन के पत्थरों के द्वारा उन पर जयवंत होंगे। वे पिएंगे और ऐसा कोलाहल करेंगे जैसे लोग दाख मधु पीकर करते हैं। वे उस कटोरे के समान भर जाएंगे जिसका उपयोग वेदी के कोनों को छिड़कने के लिए किया जाता है। जैसे कि एक चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है, वैसे ही उनका परमेश्वर यहावे उस दिन अपने लोगों की रक्षा करेगा। वे उसके देश में ऐसे चमकेंगे जैसे मुकुट में जड़े हुए रत्न चमकते हैं। कितने आकर्षित और सुंदर होंगे वे जवान अन्न खाकर, और जवान युवतियां नई अंगूर की दाख मधु पीकर हष्टपुष्ट हो जाएंगी। ज़करिया अध्याय 10। यहावे यहूदिया की देखरेख करेंगे। यहावे से विनती करो कि वह वसंत ऋतु में वर्षा भेजे। यह यहावे ही है जो बादलों को गरजाते और आंधी लाते हैं। वह सब लोगों को वर्षा देते और हर एक के लिए खेत में पौधा उपजाते हैं। मूर्तियां धोखा देने वाली बात कहते हैं और भावी कहने वाले झूठे दर्शन देखते हैं। वे झूठे स्वप्न के बारे में बताते हैं और वे व्यर्थ में सांत्वना देते हैं। इसलिए चरवाहे की कमी के कारण दुख से लोग भेड़ की तरह भटकते हैं। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़क रहा है और मैं अगुओं को दंड दूंगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान यहावे अपने झुंड अर्थात यहूदा के लोगों की देखरेख करेगा और वह उन्हें युद्ध में गर्व करने वाले घोड़े के समान बनाएगा। यहूदा से कोने का पत्थर आएगा, उससे तंबू की खूंटी, उससे युद्ध का धनुष और उससे ही हर एक शासक आएंगे। एक साथ वे युद्ध में उन योद्धाओं के समान होंगे जो गली के कीचड़ में अपने शत्रुओं को रौंदते हैं। वे लड़ेंगे क्योंकि यहावे उनके साथ है, और वे शत्रु के घुड़सवारों को लज्जित करेंगे। मैं यहूदा के लोगों को मजबूत करूंगा और योसेफ के वंश को बचाऊंगा। उनके प्रति अपनी करुणा के कारण मैं उन्हें लौटा ले आऊंगा। वे ऐसे हो जाएंगे मानो मैंने उन्हें कभी त्यागा ही ना था, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहावे हूँ। इसलिए मैं उनकी सुनकर उन्हें उत्तर दूंगा। तब एफ्राइमी लोग योद्धा के समान हो जाएंगे।
उनका हृदय
ऐसा प्रफुल्लित होगा जैसा दाख मधु पीने से होता है। उनके बच्चे इसे देखकर आनंदित होंगे और उनका मन
यहावे में आनंदित होगा।
मैं उन्हें संकेत देकर इकट्ठा करूंगा। निश्चित रूप से मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। वे पहले की तरह असंख्य हो जाएंगे। यद्यपि मैंने उन्हें लोगों के बीच में बिखरा दिया है, फिर भी उन दूर देशों में वे मुझे स्मरण करेंगे। वहां वे और उनकी संतान बचे रहेंगे और वे लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और उन्हें अश्शूर देश से इकट्ठा करूंगा। मैं उन्हें गिलियाद और लबानोन देश में ले आऊंगा और उन्हें इतना बढ़ाऊंगा कि वहां उनके लिए पर्याप्त जगह ना होगी। वे समस्याओं के समुद्र से होकर गुजरेंगे। समुद्र की बड़ी लहरें शांत कर दी जाएंगी। नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। अश्शूरियों का घमंड तोड़ दिया जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहावे में मजबूत करूंगा और वे उसके नाम में सुरक्षित रहा करेंगे। यहावे की यह घोषणा है। ज़करिया अध्याय 11। हे लबानोन, अपने दरवाजों को खोलो कि आग तुम्हारे देवदार के पेड़ों को भस्म कर दे। हे सनोवर के पेड़, तुम विलाप करो, क्योंकि देवदार का पेड़ गिर गया है, भव्य पेड़ नष्ट हो गए हैं। हे बाशान के बलूत पेड़, विलाप करो, क्योंकि घने जंगल काट डाले गए हैं। चरवाहों के विलाप को सुनो, उनके अच्छे चरागाह नष्ट हो गए हैं। सिंहों के गर्जनों को सुनो, क्योंकि यर्दन नदी की रसदार झाड़ियां नष्ट हो गई है। दो चरवाहे। यहावे मेरे परमेश्वर का यह कहना है, वध के लिए चिन्हित पशुओं के झुंड की रखवाली करो। उनके खरीददार उनका वध करते हैं और उन्हें कोई दंड नहीं मिलता। जो उन्हें बेचते हैं वे कहते हैं, यहावे की स्तुति हो, मैं धनी हो गया हूं। उनके खुद के चरवाहे उन पर दया नहीं करते। मैं अब इस देश के लोगों पर कोई दया नहीं करूंगा। यहावे की यह घोषणा है, मैं हर एक को उनके पड़ोसी और उनके राजा के अधीन कर दूंगा। हर एक व्यक्ति राजा के अधीन हो जाएगा। वे उस देश को नाश कर देंगे और मैं किसी को उनके हाथ से नहीं बचाऊंगा। अतः मैंने वध के लिए चिन्हित पशुओं के झुंड की रखवाली की, विशेष रूप से झुंड के उन पशुओं की जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। तब मैंने दो लाठियां ली और उनमें से एक नाम अनुग्रह और दूसरे का नाम एकता रखा, और मैं ही झुंड की देखभाल करने लगा। उसके बाद मैंने एक माह के भीतर ही तीन चरवाहों को काम से अलग कर दिया। वह झुंड मुझसे बहुत घृणा करने लगा और मैं उनसे ऊब गया और कहा, मैं अब तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा। जो मर रहा है वह मरे, और जो नाश हो रहा है वह नाश हो, और जो बच जाते हैं वे एक दूसरे का मांस खाए। तब वह वाचा जिसे मैंने सब जाति के लोगों के साथ बांधी थी, उसे तोड़ते हुए मैंने अपने अनुग्रह नाम की लाठी को लिया और उसे तोड़ दिया। वह वाचा उसी दिन तोड़ दी गई, और झुंड के पीड़ित पशु जो मेरी ओर ताक रहे थे, वे जान गए कि यह यहावे का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको यह अच्छा लगे तो तुम मुझे मेरी मजदूरी दे दो, पर यदि नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। तब उन्होंने मेरी मजदूरी के 30 चांदी के टुकड़े मुझे दिए। तब यहावे ने मुझसे कहा, इस राशि को कुम्हार के आगे फेंक दो, यह अच्छा मूल्य है जिसे उन्होंने मेरा ठहराया है। अतः मैंने चांदी के 29 टुकड़ों को लेकर यहावे के भवन में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने यहूदिया और इसराइल के बीच
पारिवारिक संबंध को तोड़ते हुए
मैंने एकता नाम के अपनी दूसरी लाठी को तोड़ा। तब यहावे ने मुझसे कहा, एक मूर्ख चरवाहा के साज सामान को फिर से लो, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराने वाला हूँ जो खोए हुओं की चिंता नहीं करेगा, ना जवानों को ढूंढेगा, ना घायलों को चंगा करेगा, ना ही तंदुरुस्तों को खिलाएगा, पर वह अच्छे भेड़ के मांस को खाएगा
और उनके खुरों को फाड़ डालेगा।
उस निकम्मे चरवाहे पर हाय, जो पशुओं के झुंड को छोड़कर भाग जाता है, ऐसा हो कि उसकी भुजा और दाई आंख पर तलवार चले, उसकी भुजा पूरी तरह सूख जाए और वह अपनी दाई आंख से पूरी तरह अंधा हो जाए।
जकरिया अध्याय 12। यरूशलेम के शत्रुओं का नाश किया जाना। एक भविष्यवाणी, इसराइल के विषय में यहावे का वचन। यहावे जो आकाश को फैलाते हैं, जो पृथ्वी की नींव रखते हैं और जो मनुष्य के भीतर आत्मा को बनाते हैं, वे यह कहते हैं, मैं यरूशलेम को एक ऐसा प्याला बनाने वाला हूँ जो आसपास के लोगों को लड़ खड़ा देगा। यहूदिया और साथ ही साथ यरूशलेम भी घेर लिया जाएगा। उस दिन जब पृथ्वी सब जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगी, तो मैं उसे सब जातियों के लिए एक अडिग चट्टान बना दूंगा। जो भी उसे हटाने की कोशिश करेगा, वह अपने आप को घायल करेगा। उस दिन मैं हर एक घोड़े को आतंकित करूंगा और उस पर सवार व्यक्ति के मति को भ्रष्ट कर दूंगा। यहावे की यह घोषणा है। यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा, पर मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। तब यहूदा गोत्र के लोग अपने मन में कहेंगे, यरूशलेम के लोग बलवान है, क्योंकि सर्वशक्तिमान यहावे उनका परमेश्वर है। उस दिन मैं यहूदा के लोगों को लकड़ी के ढेर में आग का एक भट्टा जैसे, पुलियों के बीच जलता हुआ एक मशाल जैसे बना दूंगा। वे अपने दाएं तथा बाएं आसपास के सब लोगों को भस्म कर देंगे, पर यरूशलेम अपने जगह में अडिग बना रहेगा। यहावे पहले यहूदिया के निवासियों को बचाएंगे, ताकि दाविद के घराने और यरूशलेम के निवासियों का आदर यहूदिया से बढ़कर ना हो। उस दिन स्वयं यहावे यरूशलेम में रहने वालों की रक्षा करेंगे, ताकि उनमें सबसे दुर्बल भी दाविद के जैसे शक्तिशाली हो जाए और दाविद का घराना परमेश्वर के जैसा, यहावे के आगे आगे जाने वाले स्वर्गदूत के जैसा हो जाए। उस दिन मैं उन सब जनताओं को नष्ट करने के लिए निकलूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करते हैं, बेधे हुए के लिए विलाप, और मैं दाविद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर कृपा तथा याचना करने वाली एक आत्मा उंडेलूंगा। वे मेरी ओर ताकेंगे जिसे उन्होंने बेधा है, और वे उसके लिए वैसा ही विलाप करेंगे जैसे कोई अपने एकमात्र बच्चे के लिए विलाप करता है, और वे उसके लिए ऐसे शोक मनाएंगे जैसे कोई अपने पहलौठे बेटे की मृत्यु पर शोक मनाता है। उस दिन यरूशलेम में विलाप ऐसा भयंकर होगा जैसा हदद रिमोन ने मगीदो के मैदान में किया था। पूरा देश शोक मनाएगा, हर गोत्र, हर एक जन अपनी पत्नी के साथ शोक मनाएगा। दाविद के घराने के गोत्र के लोग और उनकी पत्नियां, नाथान के घराने के गोत्र के लोग और उनकी पत्नियां, लेवी के घराने के गोत्र के लोग और उनकी पत्नियां, शिमेई के गोत्र के लोग और उनकी पत्नियां, और बचे सब गोत्र के लोग और उनकी पत्नियां शोक मनाएंगे। जकरिया अध्याय 13। पाप से शुद्ध करना। उस दिन दाविद के घराने और यरूशलेम निवासियों को उनके पाप और अशुद्धता से शुद्ध करने के लिए
एक झरना फूटेगा। उस दिन मैं देश से सारी मूर्तियों के नाम मिटा दूंगा
और उन्हें फिर कभी याद किया ना जाएगा।
सर्वशक्तिमान यहावे की यह घोषणा है। मैं देश से भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्धता की आत्मा दोनों को निकाल दूंगा। और फिर भी यदि कोई भविष्यवाणी करे तो उसको पैदा करने वाले उसके माता पिता उससे कहेंगे, अवश्य है कि तू मर जाए, क्योंकि तूने यहावे के नाम में झूठ बोला है। तब उसके खुद के माता पिता उस भविष्यवाणी करने वाले को तलवार से मार डालेंगे। उस दिन हरेक भविष्यवक्ता अपने भविष्य दर्शन के बारे में लज्जित होगा। वे लोगों को धोखा देने के लिए भविष्यवक्ताओं के लिए निर्धारित बाल से बने कपड़े नहीं पहनेंगे, परंतु हर एक कहेगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, मैं एक किसान हूं, मैं अपनी जवानी से ही भूमि से अपनी जीविका चलाता आया हूं। यदि कोई उससे पूछे, तुम्हारे शरीर पर ये घाव कैसे है, तो वह उत्तर देगा, मेरे मित्रों के घर में मुझे ये घाव लगे हैं। चरवाहा मारा जाएगा, भेड़े तितर बितर होंगी। हे तलवार, मेरे चरवाहे के विरुद्ध सक्रिय हो जा, उस व्यक्ति के विरुद्ध जो मेरा घनिष्ठ है। सर्वशक्तिमान यहावे की यह घोषणा है। चरवाहे पर वार करो और भेड़े तितर बितर हो जाएंगी, और मैं बच्चों के विरुद्ध अपना हाथ उठाऊंगा। यहावे की घोषणा है। पूरे देश में दो तिहाई लोगों पर वार करके मार डाला जाएगा, फिर भी एक तिहाई लोग उसमें बचे रहेंगे। इन एक तिहाई लोगों को मैं आग में डाल दूंगा। मैं उन्हें चांदी की तरह परिष्कृत करूंगा और उन्हें ऐसा परखूंगा जैसे सोने को परखा जाता है। वे लोग मेरा नाम लेकर पुकारेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा, वे मेरे लोग हैं, और वे कहेंगे, यहावे हमारे परमेश्वर हैं।
जकर्याह अध्याय 14। यहावे आकर राज्य करते हैं।
हे यरूशलेम, यहावे का एक ऐसा दिन आने वाला है जब तुम्हारी संपत्ति लूट ली जाएगी और तुम्हारे अपने घेरे के अंदर ही बांट ली जाएगी। मैं जाति जाति के लोगों को यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इकट्ठा करूंगा। शहर पर अधिकार कर लिया जाएगा, घर द्वार लूट लिए जाएंगे और स्त्रियों से बलात्कार किया जाएगा। शहर की आधी जनसंख्या बंधुआई में चली जाएगी और बचे लोग शहर में ही रहेंगे। तब यहावे जाकर उन जातियों के विरुद्ध ऐसे लड़ेंगे जैसे वे युद्ध के दिन लड़ते हैं। उस दिन यहावे यरूशलेम के पूर्व में जैतून पहाड़ पर जा खड़े होंगे, और जैतून पहाड़ पूर्व और पश्चिम दो भाग में बट जाएगा, और बीच में एक बड़ी घाटी बन जाएगी, जिससे आधा पहाड़ उत्तर की ओर तथा आधा पहाड़ दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरी इस पहाड़ की घाटी से होकर भागोगे, क्योंकि यह घाटी आत्सल तक फैली होगी। तुम ऐसे भागोगे जैसे तुम यहूदिया के राजा उज्जियाह के दिनों में हुए भूकंप के समय भागे थे। तब यहावे मेरे परमेश्वर सब पवित्र लोगों के साथ आएंगे। उस दिन ना तो सूर्य का प्रकाश होगा और ना ही ठंडा कोहरे से भरा अंधेरा। वह एक अतुलनीय दिन होगा, ऐसा दिन जिसे सिर्फ यहावे ही जानते हैं। दिन और रात के बीच कोई अंतर ना होगा। जब शाम होगी तभी प्रकाश होगा। उस दिन जीवन का जल यरूशलेम से बह निकलेगा। इसमें का आधा पानी पूर्व से मृत सागर की ओर तथा आधा पानी पश्चिम से भूमध्य सागर की ओर बहेगा, और यह ग्रीष्म काल और साथ ही साथ शीत काल में भी बहता रहेगा। सारी पृथ्वी पर यहावे ही राजा होंगे। उस दिन एक ही यहावे होंगे और सिर्फ उन्हीं का ही नाम होगा। सारी भूमि गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण में रिमोन तक अराबा के समान हो जाएगी, परंतु बिन्यामीन द्वार से लेकर पहले द्वार के लिए चिन्हित स्थान तक तथा कोने के द्वार तक और हानानेल के मीनार से लेकर राजा के रसकुंडों तक यरूशलेम को ऊंचा उठाया जाएगा। और यह अपने स्थान में बना रहेगा। लोग आकर इसमें बसेंगे और यह फिर कभी नाश नहीं किया जाएगा। यरूशलेम सुरक्षित होगा। वे जनता जिन्होंने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सब पर यहावे ऐसी महामारी लाएंगे कि जब वे अपने पैरों पर खड़े ही होंगे तो उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें उनके गोलकों में ही सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में ही सड़ जाएगी। उस दिन यहावे की ओर से लोगों में बड़े आतंक के साथ घबराहट फैलेगी। वे एक दूसरे को हाथ से पकड़कर एक दूसरे पर वार करेंगे। यहूदिया भी आकर यरूशलेम में लड़ेगा। आसपास की सभी जनताओं की संपत्ति इकट्ठी की जाएगी, जिसमें बहुत सारा सोना चांदी और कपड़ा होगा। घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, गधों और उन शिविरों में सब पशुओं पर भी इसी प्रकार की महामारी आ पड़ेगी। तब वे सब जनता जिन्होंने यरूशलेम पर आक्रमण किया था, उनमें से बचे लोग हर साल यरूशलेम जाकर राजा सर्वशक्तिमान यहावे की आराधना करेंगे और तंबुओं का त्योहार मनाएंगे। और यदि पृथ्वी के लोगों में से कोई भी राजा सर्वशक्तिमान यहावे की आराधना करने के लिए यरूशलेम नहीं जाएगा तो उनके यहाँ वर्षा ना होगी। यदि मिस्र के लोग आराधना और उत्सव में भाग लेने के लिए नहीं जाएंगे तो उनके यहाँ भी वर्षा ना होगी। यहावे उन पर वह महामारी लाएगा जो वह उन जनताओं पर लाता है जो तंबुओं का उत्सव मनाने नहीं जाते हैं। यह मिस्र देश के लोगों की सजा और उन सब जनताओं की सजा होगी जो तंबुओं का उत्सव मनाने नहीं जाते हैं। उस दिन घोड़ों की गर्दन में लटकी घंटियों पर यह शब्द खुदे हुए होंगे, यहावे के लिए पवित्र। और यहावे के भवन में भोजन पकाने के बर्तन वेदी के सामने रखे पवित्र कटोरों के समान होंगे। यरूशलेम और यहूदिया में हर एक बर्तन सर्वशक्तिमान यहावे के लिए पवित्र होगा। और वे सब जो बलि चढ़ाने के लिए आएंगे वे उन बर्तनों में से कुछ को लेंगे और उनमें पकाएंगे। और उस दिन सर्वशक्तिमान यहावे के भवन में फिर कोई कनानी व्यापारी ना होगा।